ॐ ज्ञान त्रिमनान्दस्य ज्ञानञ्जनाशलक्या चक्षुरन्मिलितानियेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां सग्राजतम् सहागना रघुनाथन्वितं तं सजैवं सद्वेतं सवद्भूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यलीलं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागना ललितं श्रीविशाखान्वितं शं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते दत्ता कञ्चन घोराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिवे वञ्चा शास्त्री का क्या होता है शास्त्री शास्त्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 तो आज जरा ज्यादा ठंड है दिल्ली में। तो ये जो उत्सव है जो आज हम मना रहे हैं ये उत्सव का भी संबंध है सर्दी के साथ। तो आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान को और गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, इसलिए कहा गया ओढ़ना शास्त्री। तो आज से लगभग 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर थे तो ये उत्सव मनाया गया था। जो पुजारी थे जगन्नाथ जी के मंदिर के, और उन्होंने प्रबंध किया था कि भगवान जगन्नाथ जी को नए वस्त्र पहनाए जाए और गर्म कपड़े पहनाए जाए। चैतन्य भागवत में क्या कहा गया है कि जो जगन्नाथ जी के पुजारी थे उन्होंने चावल का माड़, इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च क्लोथ, तो स्टार्च क्लोथ का हिंदी में अनुवाद है चावल का माड़, माड़ तो माड़ के कपड़े, नए कपड़े पुजारी लेके आए थे और पूरे जगन्नाथपुरी में उत्सव का वातावरण था। बैन बाजे बढ़ रहे थे और भगवान को बहुत सुंदर वस्त्रों में सजाया हुआ था। आज आपके डीडीज को भी बड़े सुंदर रूप से सजाया हुआ है। इतने में जरूर कहूंगा कि पिछले एक साल में राधा पार्वती सारथी गौर निताय और सीताराम लक्ष्मण हनुमान की पूजा का स्टैंडर्ड पहले से मेरे ख्याल से 4-5 गुना आगे बढ़ गया है ना। तो पुजारी भी बड़े रीति रिवाजों से करते हैं और खास करके आपके चैतन्य प्रभु बड़े अच्छी तरह भगवान का श्रृंगार करते हैं। कहाँ है चैतन्य, चैतन्य है इधर नहीं अंदर है, वो कभी कुछ बोलता नहीं है किसी को, उनका श्रृंगार फर्स्ट क्लास है। तो इसी प्रकार जगन्नाथपुरी मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था, पूरा शहर सजा हुआ था, जगन्नाथपुरी का मंदिर सजा हुआ था, बैंड बाजे बज रहे थे और पुजारियों ने माड़ के कपड़ों से भगवान जगन्नाथ जी को नए कपड़े भी पहनाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के कई भक्त थे और मैं एक भक्त था, विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि। वैसे तो विद्यानिधि बड़े प्रिय भक्त माने जाते हैं, इतने प्रिय थे कि और इतने प्रिय भक्त है भगवान के कि वो गंगा नदी में स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा यह गंगा नदी भगवान से आ रही है, हमारे पैर लगेंगे उन पर। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था राधा कुंड में आप स्नान करो तो एक रूप से राधा कुंड का जल क्योंकि राधा रानी से अभिन्न है, तो एक रूप से आप पैर मार रहे हो। तो विद्या नदी और स्वरूप दामोदर शुरू से ही बड़े प्रिय भक्त थे, मित्र थे। स्वरूप दामोदर को चैतन्य महाप्रभु जी का वो सेक्रेटरी भी थे। तो पुजारियों ने मार के नए कपड़े के कॉस्ट्यूम बनाकर भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलराम को चढ़ा दिया था और पूरे जगन्नाथ मंदिर में उत्सव का वातावरण था। पर श्रील विद्यानिधि वो माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे और गदानंदर पंडित के गुरु, तो विद्यानिधि ने कहा कि स्वरूप दामोदर से कि जो पुजारियों ने किया है गलती की है, बाण के कपड़े को धोए बिना भगवान को चढ़ाना पाप है। तो विद्यानिधि जो है वो ये इसमें नुक्स निकाल रहे थे। एक रूप से वो ठीक थे, भगवान को जो वस्त्र हम पहनाते हैं बिल्कुल साफ होना चाहिए, वो दूसरी तरफ से ये एक रिवाज चलते आ रहा था जगन्नाथपुरी मंदिर में कि इस उदाना शास्त्री के उत्सव में भगवान को मार के नए कपड़े से ड्रेस बनाकर पहनाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान है, सही कृष्णा, सही गौरा, सही जगन्नाथ, वही चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही चैतन्य महाप्रभु है जगन्नाथ जी, वही चैतन्य महाप्रभु है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने लगभग 24 साल काटे थे जगन्नाथपुरी में और रोज चैतन्य महाप्रभु जी जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। और जब संन्यास लेकर पहली बार दर्शन लेकर आए थे, संन्यास लेकर आए थे तो उनका दर्शन लेते ही भक्ति भाव में बेहोश हो गए थे और फिर उन्हें उठाकर वो ले गए थे सर्वोम भट्टाचार्य के घर में। और जब थोड़ी देर बाद नित्यानंद और दूसरे साथी आए महाप्रभु जी को खोजने के लिए तो उन्होंने सुना कि लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत खूबसूरत सन्यासी आया था और वो बेहोश हो गया है और उसे उठाकर ले गए कहां, सर्वोम भट्टाचार्य के घर। तो नित्यानंद जी समझ गए कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु होंगे, तो वहां जाकर ही उन्होंने कीर्तन किया और महाप्रभु जी होश में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन लेने रोज आते थे। तो श्रील विद्यानिधि कह रहे थे स्वरूप दामोदर से कि पुजारियों ने गलती की है, बाढ़ के कपड़े धोए बिना भगवान को पहना दिया है, यह अपराध है। स्वरूप दामोदर ने कहा बेशक नियम हो कि मार के कपड़ों को धोकर पहनाना चाहिए, पर यह एक रिवाज चलते आ रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर में और ये रिवाज चलते आ रहा है और यहां का जो राजा है जब राजा ने इजाजत दी है तो ठीक ही होगा। आखिर उस समय राजा कौन थे, महाराज प्रताप पुत्रा, जो राजा भी थे और बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त भी थे। आजकल जो राजा हैं उनमें भक्ति भावना कहाँ है, पर प्राचीन समय में जो राजा थे वो भाग्य थे। तो स्वरूप दामदा ने कहा कि तुम ये नुक्स निकाल रहे हो इसमें, पर लगता है ये तो रिवाज है यहां का जगन्नाथपुरी का कि मार के कपड़े के ड्रेस भगवान को बनाकर बनाते हैं, पर अगर हमारे राजा ने इसको नहीं टोका या रोका तो आप क्यों रोक रहे हो, आप क्यों टोक रहे हो। पर पुंडरिक श्रील विद्यानिधि ने जब भी नुक्स निकाला कहा कि नहीं ये गलत है। तो उससे रात को जगन्नाथ और बालराम, चैतन्य भागवत में कहा गया है कि भगवान की एक खास कृपा क्या है, अपने ही भक्तों को भ्रम में डालते हैं और फिर उन भक्तों के अज्ञानता को दूर करते हैं। जैसे कि भगवान की इच्छा से ही अर्जुन ब्रह्म में आए, है कि नहीं? वैसे तो अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, उनको ब्रह्म में तो आना नहीं चाहिए, पर भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन इस ब्रह्म की स्थिति में पहुंचे और फिर स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया जिसके द्वारा उनकी अज्ञानता दूर हुई और हमें भगवद गीता का संदेश प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आप देखते हो कि परीक्षित महाराज जिन्हें भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला कि उन्हें प्यास लगी थी, फिर वो गए जंगल में ऋषि के घर और वहां उन्हें उनका स्वागत नहीं किया गया, क्रोधित होकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को चढ़ाया जिसके कारण श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया। तो श्राप दिया जिसके कारण उन्होंने संतों को निमंत्रण दिया और फिर हम भक्तों की भलाई के लिए क्या प्राप्त हुआ, हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश। तो कहा गया है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, आप लोग मोबाइल फोन बंद करोगे कृपा करके, जब क्लास में आओ तो मोबाइल को बंद करके आए, अभी किसका मोबाइल चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में हमें ज्ञान तीन प्रसिद्ध ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है, एक है चैतन्य चरितमृता जिसकी रचना किसने की, कृष्णदास कविराज, दूसरा है चैतन्य भागवत जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, और चैतन्य मंगल जिसकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की है। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृता का अनुवाद किया क्योंकि चैतन्य चरितमृता में सिद्धांत ज्यादा है, लीलाएं थोड़ी कम है, और चैतन्य भागवत में लीलाएं ज्यादा है, सिद्धांत है और लीलाएं ज्यादा है। तो कई लीलाएं हैं जिनका वर्णन आपको चैतन्य भागवत में प्राप्त होता है और चैतन्य चरितमृता में नहीं, क्योंकि कृष्णदास कविराज जी ने कहा है चैतन्य चरितमृता में, मैं उन लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किताब को ज्यादा बड़ा क्यों बनाऊं। तो ये लीला जो है इसका वर्णन हमें चैतन्य भागवत में प्राप्त होता है और चैतन्य चरितमृता में इसका वर्णन भी नहीं है। तो स्वरूप दामदा ने कहा विद्यानिधि से कि लगता है कि मार के कपड़े पहनाना रिवाज है, राजा ने भी सह लिया है, ठोकरा नहीं है, तो आप क्यों ठोक रहे हो। खैर विद्यानिधि ने कई बार इस विषय की चर्चा की, पुजारी ने गलती की है, मार के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए थे, धोकर पहनाना चाहिए, ये अशुद्ध है, अशुद्ध वस्त्र भगवान को नहीं पहनाना चाहिए। तो उस दिन रात को जगन्नाथ और बालराम जी ने खास कृपा की, किस पर, शिला विद्यानिधि पर। जगन्नाथ और बालराम आए सपने में श्रुत नामदार और विद्या निधि चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, फिर रात हो गई, दोनों अपने अपने स्थानों में गए विश्राम करने के लिए। तो उस दिन रात को भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी ने प्रकट हुए विद्या निधि को सपने में, और भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्तों की निंदा कर रहे हो, मेरे जो भक्त हैं श्रद्धा से मेरी सेवा कर रहे हैं तुम उनमें ठोका टाकी कर रहे हो, तुम उनकी गलतियों को निकाल रहे हो, ये ठीक नहीं है। और भगवान ने कई थप्पड़ मार दिए सपने विद्या निधि को, कई थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि उनके चीख क्या गाल, उनके गाल जो है लाल हो गए, इतने थप्पड़ मारे भगवान ने। तो एक रूप से विद्या निधि ने कहा, मैं तो अत्यंत भाग्यशाली हूं, मुझे भगवान ने सपने में आकर कई थप्पड़ मारे जिसके कारण मेरा ये सब लाल हो गए हैं। भगवान ने कहा कि मेरे जो भक्त हैं श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं, अगर गलती से मार का कपड़ा उन्होंने पहना भी दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो यहां रिवाज है। और भगवान ने कहा कि तुम्हें इस प्रकार की आलोचना निंदा नहीं करनी चाहिए। अनेक प्रकार के अपराधों में सबसे पहला अपराध कौन सा है? भक्तों की निंदा करना। और अनेक प्रकार के अपराध है, एक है सेवा अपराध, आप सेवा करते करते अपराध कर रहे हो, जैसे कि खास करके ठाकुर जी की ऐसे भगवान के आर्च विग्रह की सेवा के विषय में अनेक प्रकार के अपराध हैं जिनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं। फिर है नाम अपराध, हरि नाम के उच्चारण में हम अनेक अपराध कर सकते हैं जिनके विषय में आप रोज सुबह सुनते हो, आप इनका वर्णन करते हो। फिर है गुरु अपराध, तो हमें फिर है जीवा अपराध, जीवात्मा पर अपराध करना, कई बार अगर आप सावधान नहीं रहो तब ऐसे अपराध करोगे कि चीटों को भी के इंसेक्ट्स को मार सकते वगैरह, तो जीवा अपराध, हमें इन सब प्रकार के अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। तो कृष्ण जगन्नाथ और बलराम ने सपने में प्रकट होकर विद्या निधि को कहा कि तुमने गलती की, ये मेरे पुजारियों की आलोचना की, और उन्हें थप्पड़ मारकर उनके गाल को लाल कर दिया। तो सुबह रोज सुबह स्वरूप नामदर और विद्या निधि मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेने जाते थे रोज। तो स्वरूप नामदर आए और उन्हें विद्या निधि मिले नहीं, रोज वो लोग एक स्थान में मिलकर दर्शन के लिए जाते थे। तो स्वरूप नामदर महाराज विद्या निधि के घर गए, उन्हें कहा आज तो मिले ही नहीं हमें, रोज हम मिलकर जगन्नाथ जी का दर्शन लेने जाते हैं। तो विद्या निधि ने कहा चलो मेरे साथ अंदर, मैं सबके सामने ये कथा नहीं सुना सकता। तो उन्होंने उन्हें बिठाकर पूरी कथा सुनाई। क्या थी कथा? कि मैं वो जो भगवान के वस्त्रों, वो मार के वस्त्रों की आलोचना कर रहा था, वो भगवान को पसंद नहीं आया, और भगवान ने मुझे मेरे ऊपर एक खास कृपा की। क्या कृपा? भगवान ने सपने में प्रकट होकर, कभी भी भगवान सपने में प्रकट नहीं हुए थे, ये पहली बार भगवान सपने में प्रकट हुए हैं। और भगवान ने सपने में प्रकट होकर क्या किया? मुझे इतने थप्पड़ मारे कि मेरी गाल पूरी लाल हो गई है, और इन लाल गालों के साथ मैं सबके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि गाल लाल भी हो गई और वो स्वेलिंग सूज गई, सब फूल गई, तो सबके सामने वो जाने में शर्मा रहे थे फूली गालों के साथ। तो उन्होंने सुरदामनों को कहा कि ये मेरा अपराध था, प्रेग रूप से अपराध था, पर भगवान की खास कृपा भी थी। एक तो भगवान प्रकट हुए मेरे सपने में, दूसरा भगवान ने ये खास कृपा करके मुझे इतने थप्पड़ मारे कि मैं गाल में खूब सूज गई है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकलूंगा पर बाद में निकलूंगा। तो ये जो कथा है असल में ये पूरे चैतन्य भागवत की आखिरी कथा है, और इस कथा के साथ पूरा चैतन्य भागवत समाप्त होता है। तो भगवान जगन्नाथ बलराम अत्यंत दया दयालु है, इतने दया दयालु हैं कि वह हम भक्तों को अनेक प्रकार के सेवाओं में जुड़ने का मौका मिलता है। जैसे आप रथ यात्रा उत्सव जो मनाते हो उसमें भगवान जगन्नाथ जी आपको खींचने के लिए सुविधा देते हैं, उन्हें धक्का देने के लिए सुविधा देते हैं, उनके सामने नाचने गाने की सुविधा देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी और अभी इस कथा का ये अर्थ नहीं कि आप भी जानबूझकर कुछ अपराध करो और ये सोचो कि राधा पार्थसारथी आपके सपने में आएंगे आपको सुधारने के लिए, या जगन्नाथ बलराम जी आएंगे सपने में आपको सुधारने के लिए। श्रील विद्यानिधि देव चैतन्य महाप्रभु जी के सनातन साथी हैं। जैसे आप माधवेन्द्रपुरी की कथा में पढ़ते हो कि माधवेन्द्रपुरी को भगवान ने तीन बार सपने में आदेश दिया। पहली बार सपने में कहा, माधवेन्द्रपुरी मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, पर मुझे छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है मिट्टी के नीचे, मुझे वहां गर्मी लग रही है, वहां जाकर खोद कर मुझे निकाल कर मेरी स्थापना करो। तो माधवेन्द्रपुरी ने स्थापना की। फिर एक और बार माधवेन्द्रपुरी को सपना आया है कि नहीं, एक और बार सपना आया जिसमें भगवान ने कहा, माधवेन्द्रपुरी मैं तुम्हारा भारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना कर दी है, पर अभी भी मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे थोड़ा चंदन चाहिए, जब चंदन ला के दो। तो माधवेन्द्रपुरी फिर चंदन लाने के लिए गए कहां, उड़ीसा। फिर एक और बार सपना आया, और वो तीसरे सपने में भगवान ने क्या कहा कि मैं आभारी हूं, तुमने चंदन इकट्ठा कर दिया है, पर इतनी दूर 80 पाउंड चंदन उठाकर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहां ही गोपीनाथ के सेवा में इस चंदन का उपयोग कर दो, मेरे में और गोपीनाथ में अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो माधवेन्द्रपुरी को तीन बार भगवान ने सपने में आदेश दिया। तो आप कहोगे एक हम ही राह देख रहे हैं, हमें कहा भगवान सपने में आदेश देंगे और फिर हम पालन करेंगे, तो हमें सपने में आ दे, और फिर आप सुबह एक दिन जाकर कहोगे हमें भगवान ने कल सपने में कहा कि संकीर्तन नहीं करो। तो इस विषय में प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान सपने में केवल उनके शुद्ध भक्तों को उपदेश देंगे। श्रील विद्यानिधि इतने प्रिय भक्त है चैतन्य महाप्रभु जी के कि महाप्रभु जी उन्हें अपना पिता बुलाते थे, इतने प्रिय भक्त है, इतने उच्चे कोटि के भक्त हैं कि वो गंगा में अपना पांव भी नहीं रखते थे। तो ये विद्यानिधि कौन है, उनके सनातन साथी हैं चैतन्य महाप्रभु जी के। तो जगन्नाथ और बलराम जी प्रकट हुए सपने में और उन्हें शिक्षा दी। तो जगन्नाथ और बलराम जी की कई लीलाएं हैं, आपने महाराज प्रताप पुत्रा का नाम सुना है। तो उनके पिता का नाम था महाराज पुरुषोत्तम, उनकी माता का नाम था पद्मावती। तो एक समय महाराज पुरुषोत्तम जो थे बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जगन्नाथ जी के, तो और वो थे शुरू में उनका विवाह नहीं हुआ था। तो एक समय वो अपनी सेना लेकर एक और राजा जिनका नाम था महाराज नरसिंहदेव से लड़ने गए थे, पर राजा नरसिंहदेव महाराज पुरुषोत्तम थे उड़ीसा के राजा, और महाराज नरसिंहदेव थे पड़ोस के स्थान के राजा। खैर तो उन्होंने युद्ध नहीं किया और ये निर्णय हुआ कि भगवान के राजा नरसिंहदेव की बेटी पद्मावती का विवाह होगा महाराज पुरुषोत्तम से। तो महाराज पुरुषोत्तम जो थे जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय भक्त थे, वो वापस लौटे रथ यात्रा की तैयारी करने के लिए। प्राचीन समय में जो रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता था, खास करके उड़ीसा में ये सब मनाया जाता था, योजना की जाती थी राजा के निर्देशन में। और महाराज पुरुषोत्तम देव ने महाराज नरसिंह देव को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे रथ यात्रा में। राजा नरसिंह देव खुद तो नहीं आए, पर उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा प्रतिनिधि के रूप में। तो मंत्री आए तो मंत्री ने देखा कि राजा पुरुषोत्तम भंगी का काम कर रहा है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा पूरे रास्ते को धो रहा था गुलाब के पानी से, उससे पहले पूरे रास्ते को झाड़ू दे रहा था। तो उस मंत्री ने नरसिंहदेव राजा को सूचना भेजी कि आप ये रिश्ता जो आपने किया है आपकी बेटी के विवाह का, इसके साथ उसको कैंसिल करो, ये राजा नहीं ये तो भंगी है। मैंने देखा कि वो सड़क को साफ कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, सड़क को धो रहा है। तो राजा ने सूचना भेजी मैं मेरी बेटी का विवाह एक भंगी से नहीं करूंगा, वो शादी कैंसिल हो गई। तो महाराज पुरुषोत्तम ने बड़ा अपमान महसूस किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं भंगी हूं तो किसका भंगी हूं, जगन्नाथ जी का, और इस राजा की ये हिम्मत, राजा थे तो राजा से खून था। तो अपनी सेना को लेकर वो गए, उन्होंने सोचा कि राजा ने जगन्नाथ जी का अपमान किया है तो बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध में गए नरसिंहदेव राजा के साथ। जब युद्ध में गए तो नरसिंहदेव राजा ने उन्हें हरा दिया। तो जब वो हार गए तो बड़े उदास हुए और वापस लौटे उदास, मैं तो गया था जगन्नाथ जी के नाम की सुरक्षा करने के लिए, वही युद्ध में हार गया। तो वो एक संत के घर में कुटिया में गए, उस संत से उन्होंने पूरी कथा सुनाई। तो संत ने कहा युद्ध शुरू करने से पहले तुमने क्या जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त की थी? तो राजन का ये भूल हो गई, मैंने राज जगन्नाथ जी की कृपा की भीख मांगे बिना मैं आगे बढ़ गया युद्ध करने के लिए। तो फिर राजा के हृदय में पछतावा हुआ और वो गए जगन्नाथ मंदिर में और वहां उन्होंने स्वीकार किया कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था उनकी कृपा प्राप्त किए बिना। तो एक दिव्य वाणी ने कहा चिंता मत करो, फिर से जाओ युद्ध में लड़ने के लिए और मैं और मेरा भाई दोनों आएंगे तुम्हारी साइड, तुम्हारी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए। तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान कैसे आएंगे युद्ध में लड़ने के लिए हमारे लिए। खैर पूरे शहर में खबर फैल गई कि जगन्नाथ और बालाराम खुद जा रहे हैं राजा महाराज पुरुषोत्तम के सेना में लड़ने के लिए। तो पूरी शहर की प्रजा साथ जुड़ गई इस युद्ध में, सबने कहा नहीं नहीं हम चलेंगे युद्ध में लड़ने के लिए। और पर राजा यही सोच रहा था कि जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं आऊंगा इस युद्ध में लड़ने के लिए मेरे भाई के साथ, वो कैसे आएंगे। खैर वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़े और उनकी सेना से आगे दो घोड़ों में एक घोड़ा था काला दूसरा था सफेद, और दो घोड़ों में दो सेनापति बैठे थे और आगे एक औरत लस्सी बेच रही थी। तो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस औरत से लस्सी खरीद कर पी ली। औरत ने कहा पैसे? उन्होंने कहा हम महाराज पुरुषोत्तम के सेना के सदस्य हैं, ये मुंदरी एक रत्ना की मुंदरी थी बड़ी महंगी, जगन्नाथ जी जो पहनते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में, वो मुंदरी उन्होंने उस औरत को दिया और कहा अभी थोड़ी देर पीछे महाराज पुरुषोत्तम महाराज अपनी सेना के साथ ये मुंदरी उन्हें दे देना और वो तुम्हें पैसे देंगे। तो जब राजा उधर पहुंचे अपनी सेना के साथ, उस औरत वो जो लस्सी बेचती थी उसने उनको रोका, रोको 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 रोको, तुम्हारी सेना के एक दो प्रसिद्ध व्यक्ति आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने सारी लस्सी मेरी खरी पी ली और कहा कि आप पैसे दोगे, और वो ये मुंदरी छोड़ गए हैं देने के लिए आपको। जब राजा ने वो मुंदरी देखी तो समझ गए ये तो जगन्नाथ जी की मुंदरी है, ये तो वही मुंदरी है जो कि वो जगन्नाथपुरी मंदिर में पहनते हैं। तो वो समझ गए क्या कि जगन्नाथ जी आ गए हैं युद्ध में लड़ने के लिए, किसके लिए, मेरी तरफ से लड़ने के लिए। तो राजा इतना खुश हुआ कि उस औरत को उन्होंने 7 गांव दे दिए लस्सी के बदले में, क्योंकि वो औरत ने मांगा पैसे तो उन्होंने 7 बड़े बड़े गांव दे दिए। जब उन्होंने देखा कि ये जगन्नाथ जी और बलराम जी उनकी तरफ से लड़ने को आ गए हैं, तो फिर वो लड़ने गए और महाराज पुरुषोत्तम ने विजय प्राप्त किया। और फिर वो वापस लौटे तो भगवान नरसिंहदेव और राजा नरसिंहदेव की बेटी का विवाह होना था जो पहले कैंसिल हो गया था, फिर महाराज पुरुषोत्तम का विवाह हुआ उनके साथ पद्मावती, और फिर उनके बेटे थे महाराज प्रतपुत्र जिनके विषय में आप चैतन्य चतुर्मिति में पढ़ते हो। तो जगन्नाथ और बलराम जो है अपने भक्तों के लिए श्रील विदय निधि की कथा में आप पढ़ते हो कि उन्होंने खास कृपा अपने भक्त पर कैसे की, खास कृपा की उन्हें थप्पड़ मारकर और शिक्षा देकर और अपना दर्शन दिया। और महाराज पुरुषोत्तम की कथा में आप देखते हो कि किस प्रकार वो लड़े महाराज पुरुषोत्तम की सेना में उनकी सुरक्षा के लिए। तो इस उदाना शास्त्री उत्सव से एक शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो शिक्षा ये है क्या कि हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए और हर प्रकार के अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे भक्ति के विषय में, उन्होंने कहा किस प्रकार ब्रह्मंद ब्रह्मित कोनो भगवानो जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, किस प्रकार अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, भक्ति का बीज। और वो भक्ति का बीज उगेगा कैसे, वो उगता है जब आप इसे श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से जल पिलाते हो, और फिर ये बीज उगता है। और आगे उन्होंने कहा कि बीज उगने के साथ कई बार अनवांटेड वीड्स, क्या बोलते हैं अनवांटेड वीड्स को हिंदी में, कई बार झाड़ वगैरह जो नहीं चाहिए वो भी उगने लग जाते हैं। तो ये अनवांटेड वीड्स को क्या करना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। अनवांटेड वीड से क्या अर्थ है, कई बार हम जाप कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं बड़े घमंडी हो जाते हैं, हमारे में आदर की इच्छा हो जाती है, हमें भक्ति के साथ ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा पद नहीं मिलेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे। तो ये इन्हें कहा जाता है अनवांटेड वीड्स, और ये अनवांटेड वीड्स के द्वारा के कारण आपका भक्ति का जो पेड़ है वो ठीक नहीं उगता। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हमें साधु संगत के द्वारा ये अनवांटेड वीड्स को पहचान लेना चाहिए, और जैसे ही उन्हें पहचान कर हमें उन्हें उखाड़ देना चाहिए। इसलिए कहा गया कि हमें सदा साधु संगत में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगत में आप पहचान सकोगे जब ये अनवांटेड वीड्स उग रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि ये भक्ति का जो बगीचा है ये नष्ट हो जाता है कैसे, ये नष्ट हो जाता है कैसे, ये अपराधों के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपराधों से बचना चाहिए, खास करके वैष्णव अपराध। जैसे हमने कहा कि अनेक प्रकार के अपराध हैं, जीव अपराध है, गुरु अपराध है, सेवा अपराध है, वैष्णवा अपराध है, ये चारों प्रकार के अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और फिर ये भक्ति का भी, अगर अपराधों से बचोगे और अनवांटेड बीज को खार दोगे तो इसका क्या परिणाम होगा? फिर आपका भक्ति का बीज जो है उगेगा और कहां जाकर शरण लेगा? भगवान के चरण कमलों में, गोलोक वृंदावन में। और इसके द्वारा इस पेड़ से जो फल उत्पन्न होगा वो होगा भगवत प्रेम का फल। और चैतन्य चरितमृत कहा गया है कि जो व्यक्ति भी इस फल को चखेगा उसके हृदय में शुद्ध भक्ति की भावना उत्पन्न होगी। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम हर प्रकार के अपराधों से अपने आप को बचा कर रखें। इज इट टाइम फॉर भागवतम क्लास और शुड आई स्टॉप नाउ? मैंने आज के भागवतम श्लोक के लिए, क्योंकि इस वक्त मैराथन चल रहा है, शुड आई डू और अच्छा तो ये श्लोक तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिससे आप सब परिचित हो, क्योंकि मैराथन का समय है तो कभी कभी ऐसे श्लोक सुने जिसमें प्रचार की सेवा पर बल है तो ज्यादा सहयोगी रहता है। ये श्लोक तो बड़ा प्रसिद्ध है, शायद आप सबने कंठस्थ किया होगा। तितिक्षवा करुणिकः शूर्धा सर्वं धैनं अजता शत्रवा शांता साध्वा साधु भूषणः तितिक्ष्वा करुणिकः शूर्धा सर्वधैनं अजता शत्रवा शांता साध्वा साधु भूषण। शब्दार्थ
शांता
हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर तात्पर्य है कि नहीं, आपने ध्यान से सुना। असल में हमें यह तात्पर्य रोज पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि भक्त को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने यहां अनेक उदाहरण दिए। तो इस समय आप सब जुड़े हो ग्रंथों के वितरण के मैराथन में, और ये सेवा इतनी आसान सेवा नहीं है। हम आपको झूठ के बोले, ये थोड़ी कि आप जिसे भी कहोगे गीता पढ़िए, गीता के वितरण में सहयोग दीजिए, कहेगा हाँ हाँ आओ आओ। जैसे आप शाम के समय देखते हो कि शराब की दुकानों के सामने भीड़ रहती है, तो आप ऐसी भीड़ उम्मीद तो नहीं कर सकते कि इतने लोग आएंगे, किताब दो हमें भी गीता दो, हम भी गीता बांटने में सहयोग देना चाहते हैं। तो पर जब भी आप लोग प्रयास कर रहे हो गीता का वितरण करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इस सेवा में, क्यों? क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भक्त को पूरा विश्वास है कि कृष्णा भक्ति के बिना ये जीवन जो है व्यर्थ है, और कृष्ण भक्ति के सहारे ही आप इस जीवन को सुखी बना सकते हो, सफल बना सकते हो। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को गीता की सेवा में जोड़ने के लिए, कि किसी प्रकार से अगर वो गीता पढ़ेंगे, गीता के वितरण में सहयोग देंगे, तो उन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और आप सबका अभ्यास है कि जो भी गीता पढ़, अनेक व्यक्ति ग्रंथों को लेते हैं, सब तो नहीं भक्त बनते, पर उन थोड़ी संख्या में भी भक्त बन जाए वो अच्छी चीज है। और प्रभुपाद जी ने जैसे कहा, इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई यदि छुए भी, एक श्लोक भी पढ़ ले, तो उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। तो यहां कहा जा रहा है तितिक्ष्वा करुणी कहा, भक्तों के अनेक गुणों में एक भक्त, सबसे पहला गुण क्या है? तितिक्ष्वा, अत्यंत सहनशील। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें केवल 8 श्लोक दिए जिन्हें आप शिक्षाशा के नाम से जानते हो, और तीसरा श्लोक कौन सा है? तीसरा श्लोक कृष्णदास कविराज जी कहते हैं ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमें गले में बांध कर रखना चाहिए। क्यों? गले में बांधोगे मत, दूसरे शब्द में 24 घंटे अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि अगर हम सदा हरि का नाम लेना चाहते हैं तो हमें किस रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। कई बार जब आप लोग प्रयास कर रहे हो ग्रंथों को बांटने में, लोगों को प्रचार की सेवा में जोड़ने के लिए, और आप कईयों से बात करो और वो साथ नहीं दें, तो कई बार भक्त थोड़े डिस्करेज हो जाते हैं। पर हमें डिस्करेज होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा काम क्या है? प्रयास करना, मेहनत करना, آپ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اور بھگوان پرسن ہوتے ہیں آپ کے پریاس سے اور پریشرم سے. سو چاہے آدر ہو یا اپمان ہو، جیسے میں نے کہا تھا پچھلے دفعے چیتنیہ بھاگوت میں آپ پڑھتے ہو کہ جب بھگوان نتیانندا جی پرچار کر رہے تھے، گھر گھر جا رہے تھے چیتنیہ مہا پربھو جی کے آدیش کے انوسار، کئی ستھانوں میں لوگوں نے ان کا اپمان کیا، کئی گھروں میں لوگوں نے ان کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا. لوگوں نے کہا جاسوس آ گئے ہیں سادھو کے روپ میں. جب ہی اور وہ نتیانندا جی کون ہے؟ سوئم بھگوان ہے. سوئم بھگوان کو کہا کیا جاسوس آ گئے ہیں. اور کب؟ آج نہیں، 500 سال پورو، جبکہ واتاورن آج سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر تھا. تو مطلب یہ ہے پراپاد جی نے بھی جب پرچار کیا کتنے سالوں کے لیے انہیں سنگھرش کرنا پڑا. تو سادھو کو ہر ستھتی میں آدر اپمان سکھ دکھ گرمی سردی ہر ستھتی میں سہنشیل ہونا چاہیے. اور کھڑو نے کہا اصلی دیا، سادھو کے ایک من میں ایک یہ وچار ہے اصلی دیا کیا ہے؟ بھگوان کا پرچار کرنا. ابھی آپ کہو گے ہمارے میں وہ دیا کی بھاونا ہے ہی نہیں. چیتنیہ مہاپربھو جی کے وشے میں روپا گوسوامی جی نے کیا کہا؟ نمو مہا ودنایا کرشنا پریم پردایتے. چیتنیہ مہاپربھو جی میں یہ بھاونا تھی کہ سب کا ادھار ہو، شد بھکتوں میں وہ بھاونا ہے. پر آپ کہہ سکتے ہو سچائی کے ساتھ کہ ہمارے میں تو بھاونا ہے ہی نہیں دیا کی بھاونا. لوگ نرک میں جاتے ہیں جانے دو، ہمارا کیا، ہم تو نرک نہیں جا رہے، دوسرے جا رہے ہیں جانے دو. تو یہاں کہا گیا ہے کہ بھکتوں کا ایک لکشن ہونا چاہیے کرونکا، ہندی دینا کرونکا مطلب دیا کی بھاونا ہونی چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے میں تو دیا کی بھاونا ہے ہی نہیں، ہم تو دیالو ہے ہی نہیں، ہم تو کٹھور دل کے ہیں، ہمیں کیول اپنی سویدھا چاہیے. تو یہ دیالو بھاونا کیسے اتپن ہوگی؟ تو اس وشے میں پراپا جی نے سمجھایا ہے کہ آپ میں بے شک دیالو بھاونا نہیں ہے، ہم سویکار کرتے ہیں، پر آپ ان کے آدیش کا پالن کرو جن میں دیالو بھاونا ہے. اور اگر آپ ان کے آدیش کا پالن کرو گے جن میں دیالو بھاونا ہے یا تھی، تو آپ میں بھی وہ دیالو بھاونا اتپن ہو جائے گی. آپ سمجھے؟ جیسے آپ میں بھکتی بھاونا نہیں ہے پر آپ بھگوان کے سندیش کا پالن کر کے اچارن کرتے ہو، سیوا میں جڑتے ہو، تو آپ میں بھی بھکتی کے پرتی آکرشن اتپن ہوگا. تو اس ستھتی میں ہمارے ہردے میں دیالو بھاونا نہیں ہے، صرف کیونکہ ہم 10 گھنٹے دن میں جاتے ہیں پرچار کے لیے اور ہم کہیں نہیں نہیں ہمارے ہردے میں شدھ دیالو بھاونا ہے، یہ غلط ہے. پر آپ کی تعلیم کیا ہے کہ ہمیں وشواس ہے بھگوان کی وانی میں اور مہان اچاریوں کی وانی میں. ہمیں وشواس ہے کہ جب بھگوان کہتے ہیں سب بھکتوں میں سب سے پریہ ہے جو میرا پرچار کرے، اور ہمیں وشواس ہے کہ چیتنیہ مہاپربھو جی نے ہمیں آدیش دیا کیا جارے دکھو تاہے کہو کرشن، مہاپربھو جی نے یہ نہیں کہا تم پہلے شدھ بھکت بنو پھر بعد میں پرچار شروع کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ترنت ہی جسے بھی تم ملو اسے کیا کہو؟ کرشنا کا اپدیش دو. اسی پرکار ہمارے جو مہان اچاریا ہوئے ہیں ٹھاکر بھکتی ونود، بھکتی سدھانند جی، شیلا پربھوپاد، ان سب نے اپنے سدھانت میں دیالو بھاونا کو اتپن کرنے کی شکشا ہمیں دی ہے. تو ہمارے میں بالکل دیالو بھاونا نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ لوگ ایک شلوک گیتا کا پڑھیں گے تو کیسے ان کا ادھار ہو جائے گا، کیسے ان کا آدھیاتمک جیون آرمبھ ہوگا. ہم اتنے اگیانتا میں ہیں کہ ہم بھکتوں کے لیے سوچنا اور سمجھنا بھی بڑا کٹھن ہے، واسطہ تو یہ ہے. پر جیسے پراپا جی نے کہا اگر ہم بھگوان اور شدھ بھکتوں کے آدیش میں شردھا رکھتے ہوئے उसका पालन करेंगे तो ये पालन करने से ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, आप में दयालु भावना उत्पन्न हो जाएगी प्रयास करने से। तो ये हमें सोच लेना चाहिए, इस समय हमारे में इन संतों के गुण नहीं है, पर अगर हम इस शिक्षा का पालन करेंगे तो हमारे में भी ये दयालु भावना होगी। और प्रभुपाद जी कहते थे कि यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा, आप जब प्रयास करते हो लोगों को कृष्ण भगवान का ज्ञान देने के लिए तो उसके बदले में आपको क्या प्राप्त होता है, कृष्णा की कृपा। और कृष्णा की कृपा प्राप्त होने का क्या अर्थ है, आप में दृढ़ भावना उत्पन्न होती है कि हमने भक्ति के मार्ग में ही रहना है, भक्ति से किसी प्रकार विचलित नहीं होना। और भगवान फिर आपको जो अंतर्यामी है आपको शिक्षा देते हैं क्या, किस माध्यम से आप उनकी सेवा में और दृढ़ होकर जुड़ सको। तो ये स्वीकार आप कर सकते हो कि हमारे में कोई गुण नहीं, दयालु भावना भी नहीं, पर हमारे में इतना विश्वास है कि जो वाणी भगवान ने दी है, जो उपदेश उनके शुद्ध भक्तों ने दिया है, अगर हम उसके अनुसार चले तो हमारे में भी ये गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं, कई बार भक्त कहते हैं हमारे में तो दया की भावना ही नहीं, हम तो प्रचार कर ही नहीं सकते। आप बेशक प्रचार नहीं कर सकते, पर अगर आप प्रयास करोगे, भगवान क्या कहते हैं गीता में, जो प्रयास करते हैं सेवा करने के लिए उनमें जो कमी हो उसे भी मैं क्या करता हूं, दूर करता हूं। तो यह कहा जा रहा है कि भक्त में सहनशील भी होना चाहिए और दया की भावना भी होना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, किसका, जीसस क्राइस्ट का, किसका, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को 20 बाजारों में ले घसीट कर ले गए थे, घसीट कर, और पीट रहे थे। क्यों, क्या था उनका दोष, केवल उन्होंने हरि नाम को नहीं त्यागा मुसलमान खानदान में जन्म लेते हुए। और आगे प्रभुपाद जी वैष्णव के गुणों का वर्णन करते हुए शिवानंद सेन का उदाहरण देते हैं। शिवानंद सेन ने एक कुत्ते का भी उद्धार किया। एक समय शिवानंद सेन वापस लौट रहे थे तो पीछे उनके पीछे एक कुत्ता चलते आया। फिर जब वो नाव में उन्होंने जाना था, बंगाल में थे नदी के पार, नाव वाले ने कहा कुत्ता नहीं बैठ सकता, तो शिवानंद सेन समझ गए इसको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उन्होंने जब पैसा बढ़ा दिया और फिर कुत्ता भी उनके साथ नाव में आया, उनके घर आया। तो शिवानंद सेन कुत्ते की भी देखभाल कर रहे थे और एक दिन वो बाहर गए थे सरकारी काम पर, तो उनके नौकर ने कुत्ते को भोजन नहीं दिया, कुत्ते को भूखा रखा, और वो कुत्ता भूखा होते हुए घर छोड़कर बाहर चले गए। जब शिवानंद सेन लौटे तो उन्होंने देखा कुत्ता नहीं है, और नौकर की लापरवाही के कारण भूखा कुत्ता घर छोड़कर चले गया। तो बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कई आदमियों को भेजा, ढूंढो कुत्ते को कहां है, किसको कुत्ता मिला ही नहीं। तो अगले दिन शिवानंद सेन गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास, जैसे वो रोज जाते थे उन्हें मिलने के लिए। और जब वो अगले दिन गए चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए तो उन्होंने देखा कि वो कुत्ता महाप्रभु जी के पास बैठा हुआ था। महाप्रभु जी सूखा नारियल ऊपर फेंक रहे थे और वो कुत्ता छलांग मार का खा रहा था, और कुत्ता छलांग मार का नारियल भी खा रहा था और हरे कृष्णा बोल रहा था। और ये कुत्ता फिर अगले दिन हरे कृष्णा बोलते बोलते भगवान के धाम लौट गया। तो चैतन्य चरितमृत में इस कथा का वर्णन है, और चैतन्य मंगल में एक और कथा है कि किस प्रकार महाप्रभु जी ने पपी को, क्या कहते हैं, पपी,
पिल्ला,
किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कई एक पिल्ले को कैसे शुद्ध भक्त बनाया। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप अभी पिल्ला और कुत्तों को रखना शुरू कर दो। ये केवल उदाहरण दिया जा रहा है इसलिए, ये बताने के लिए कि भक्त में इतनी भावना होती है कि हर जीवात्मा का उद्धार किया जाए। शिवनंदन सेन कुत्तों को पालने की इच्छा नहीं थी, पर क्योंकि कुत्ता उनका पीछा कर रहा था तो उन्होंने सोचा भगवान ने भेजा है इसका उद्धार करने के लिए। मुझे याद है 2-3 साल पहले हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में थे, तो वहां एक कुत्ता उनका पीछा कर रहा था और शुरू पहले दिन से आखिरी दिन तक वो कुत्ता ब्रजमंडल परिक्रमा के साथ रहा। तो प्रभुपाद जी शिवनंद सेन का उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में कि किस प्रकार शिवनंद सेन ने उस कुत्ते का भी उदाहरण किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त जो है पूरे समाज का शुभ चिंतक है और उसकी इच्छा क्या है कि सूरदा सर्वधैनम। सूरदा सर्वधैनम का अर्थ है भक्त जो है सब जीवात्माओं का क्या है, मित्र है सबका। ये नहीं ये मित्र है ये मेरा शत्रु है, इसलिए भगवान आगे कहते अजता शत्रव संत। अजता शत्रव का अर्थ है किसी के प्रति द्वेष नहीं, जो उसको कष्ट पहुंचा है उसे भी वो मित्र मानता है। जो भक्त है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता। हम साधारण भाषा में तो यही सोचते हैं समाज में, ये मित्र है ये शत्रु है, ये मेरे का साथ दे रहा है ये साथ नहीं दे रहा, पर भक्त के लिए कोई किसके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं। शांत रहता है, क्यों? क्योंकि मन है वो जुड़ा हुआ है किसमें, भगवान की भक्ति में। तो आप भक्तों से ये निवेदन है कि आप सब प्रयास कीजिए इन गुणों को अनुकूल करने के लिए। बेशक ये गुण नहीं है, पर अगर हम भगवान और महान आचार्यों के आदेश का पालन करने का प्रयास करें तो भगवान आपको योग्यता देंगे जिसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। सब करोगे?